نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سیلف گرومنگ کے سلسلے میں ہمارا آج کا ٹاپک ہے کل کی زندگی آج جی لے. کیا مطلب؟ جو کل آنے والا ہے اس سے پہلے ہی آج جی لے. تو آئیے چند سوال ہم خود سے کرتے ہیں. پہلا سوال، آپ زندگی سے کیا چاہتی ہیں؟ آپ اس کو اپنے لیے لکھ لیجئے، میں زندگی سے کیا چاہتی ہوں؟ پھر میں کیا کرنا چاہتی ہوں؟ اور میں کیا پانا چاہتی ہوں؟ کیا کرنا چاہتی ہوں، کیا پانا چاہتی ہوں؟ بیٹا ادھر آئے، ریسیپشن پہ سر کا بیگ ہے، وہ ان کو بھجوا دیں ادھر ریسیپشن پہ. ہاں جی، آپ زندگی سے کیا چاہتی ہیں؟ آپ کیا کرنا چاہتی ہیں؟ آپ کیا پانا چاہتی ہیں؟ پھر اگلا سوال کریں، اگر ہر چیز آپ کی مرضی، خواہشات اور سوچوں کے مطابق ہو جائے، یعنی رستے کی کوئی رکاوٹ نہ ہو، کوئی آبسٹیکل نہیں، کوئی پابندی نہیں، کوئی مخالفت نہیں، کسی قسم کا کوئی پریشر نہیں، یعنی 110% آپ کے حالات آپ کے موافق ہو جائیں. پہلے میری اس بات کو سمجھیں، ڈریم لگ رہا ہے نا، یعنی کوئی زیر زبر بھی اونچی نیچی نہ ہو، 100% اگر آپ کی زندگی میں وہ سب کچھ ہو جائے جیسے حالات آپ چاہتی ہیں، تو پھر آپ کیا کریں گی؟ بات سمجھے؟ ایک جملہ تفسیر میں بولا تھا، وہ یہاں یاد آ رہا ہے، کہ مجبوریوں کے پردے میں بہت سارے لوگوں کی منافقت چھپ جاتی ہے. ہم سوچتے ہیں ہم پہ پابندیاں ہیں، لیکن یہ اللہ کا شکر ہوتا ہے کہ پابندیاں ہیں. پابندی نہیں بھی ہوگی نا، مخالفت نہیں بھی ہوگی نا، لیکن ہمارے اندر کے نفاق نے ہمیں نماز وہ پڑھنے نہیں دینی، یا ہمیں وہ نیکی کا کام کرنے نہیں دینا، وہ جرات نہیں ہوگی جو دوسرے کے اوپر ہے. مثال ہے کہ ایک عورت ہے، وہ کہتی ہے میرا بہت دل کرتا ہے میں نقاب کروں. کوئی بھی مثال لے لیں، ایک مرد ہے، برادر ہے، وہ کہتا ہے میرا دل کرتا ہے داڑھی رکھوں، لیکن کوئی پابندی ہے اس پہ فلاں فلاں، تو وہ سوچتا ہے اس پابندی کی وجہ سے میں نہیں کر رہا، لیکن وہ پابندی رحمت ہے. کیوں بھلا؟ کہ پابندی نہیں بھی ہوگی تو اس نے کرنا کوئی نہیں، کیونکہ جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں، مشکلات چھٹ جاتی ہیں، آسانیاں آ جاتی ہیں. کب؟ جب اللہ ہمارا سچا ہونا دیکھ لیتا ہے، ہماری کمٹمنٹ دیکھ لیتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ تند یہ باد مخالف سے نہ گھبرا کے، ہے یہ تو تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. تو زندگی میں یہ سب کچھ ہو کہ جب آپ کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، تو پھر آپ کہاں ہوں گے؟ یہ آپ خود سے پوچھئے. اگر کوئی رکاوٹ، کوئی مشکل، کوئی گھڑا، کوئی بدقسمتی آپ کے پاؤں کی بیڑی نہ بن پائے، تو 5 سال کے بعد آپ کی زندگی کیا ہوگی؟ سوچئے ذرا. آپ یہاں اپنے آپ کو اس کلاس روم میں لے کے بیٹھتی ہیں نا ہر ویک، اب آپ سوچئے، یا 2 دن یا 4 دن، اگلے 5 سال میری زندگی کے اگر مجھے ویسے ہی گزارنے دیے جائے جیسے میں چاہتی ہوں، کوئی رکاوٹ نہ آئے، کوئی بیڑی نہ پاؤں میں پڑے، تو میں کہاں ہوں گی؟ میری زندگی کیسی ہوگی؟ ایک لمحے کو فرض کر لیں کہ آپ جو چاہیں گے، جو مانگیں گے، جو پسند کریں گے، جو آرزو کریں گے، جو سوچیں گے، سب سچ ہو جائے گا، تو 5 سال کے بعد آپ کی زندگی کیسے بدل کے رہ جائے گی؟ آپ دیکھیے کہ ہم بہت کچھ بننا چاہتے ہیں، لیکن ہم ہمیشہ حالات کے دھارے میں بہتے ہیں. الا ماشاء اللہ. ایک ہی ماحول تھا مکہ کا، ایک ہی پیغام اترا حرا سے، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اور ایک ہی دعوت تھی نبی کی سارے مکہ والوں کے لیے، قول لا الہ الا اللہ تفلحون، لوگ اللہ کو ایک کہو فلاح پا جاؤ گے. لیکن کیوں چند 5-6 لوگوں کے سوا بہت سارے لوگوں کو بات فوراً سمجھ نہ آئی؟ بعد میں تو بہت ساروں کو سمجھ آ گئی الحمدللہ، فوراً کیوں نہ آئی؟ जो बात हज़रत खदीजा को समझ आ गई, हज़रत अली को आ गई, हज़रत अबू बकर को आ गई, हज़रत ज़ैद को आ गई, वो बहुत सारे लोगों को क्यों ना आई? इसकी वजह क्या होती है कि जिनके अंदर हक़ की तलाश होती है ना, जो सच को वो ढूंढ रहे होते हैं, तो हिदायत को और हक़ को पाकर वो ऐसे लपकते हैं कि जैसे परदेश में कोई अपना हम वतन मिल जाए, कोई हम जोली को बचपन की सहेली मिल जाए। वो हक़ को गले लगा लेते हैं, कहते हैं हाय बहुत दिन से तुम्हें ढूंढ रही थी, तुम कहाँ चली गई? कभी बचपन की कोई दोस्त आपको दुनिया के किसी मेले में मिले तो आप कहते हैं अरे तुम किधर थी? तो फिर आप में कोई बेगानगी नहीं होती, थोड़ी देर बाद आपको ऐसे लगता है कभी बिछड़े भी नहीं थे। तो हक़ और कामयाबी जिस बंदे की तलब होती है ना, उसको रुकावटें रोकती नहीं हैं, मुश्किलात नहीं रोकती। ये कब रोकती हैं? जब अंदर से यकीन में कमी होती है। देखिए जब मौसम बदलता है तो कुछ लोग बीमार होते हैं, कुछ नहीं होते। आप कहते हैं आजकल वायरस फैला हुआ है, क्या उस वायरस से सारे लोग बीमार हो जाते हैं? नहीं। किन को असर होता है वायरस का, एलर्जी का, गर्मी का, सर्दी का? जो अंदर से कमज़ोर होते हैं। सेहतमंद लोग उसी फिज़ा में ठीक ठाक दन दनाते फिरते हैं, और कमज़ोर अंदर से किसी भी तरह वो कहते हैं छींकें आ गई, पोलन हो गई, ये हो गया, वो हो गया। तो बिल्कुल इसी तरह से आप और मैं अगर अपने आप को किसी जगह देखना चाहते हैं ना कल, तो उसके लिए आज हमें इसका यकीन रखना पड़ेगा। कल के आईने में आज खुद को देखें, कल कहाँ जाना चाहती हूँ इसको आज ड्रीम बनाएं, इसको आज देखें, आज देखिए इस सारी चीज़ को। इससे आप देखेंगे कि आपको ख्वाबों में भी अपना मुस्तकबिल दिखेगा। जब तक हम ड्रीम्स नहीं देखते ना, हमारे ड्रीम सच नहीं होते। अगर आपने मुस्तकबिल में ये ड्रीम नहीं बनाया हुआ ना कि आप अरबी में से कुरान उर्दू या नौश्क में या इंग्लिश में पढ़ें, तो आप हर क्लास में नहीं आ सकेंगी। ये जो बीच में छुट्टियाँ हो जाती हैं, बीच में सुस्तियाँ आ जाती हैं, रुकावट आ जाती है, मजबूरियाँ आ जाती हैं, ये नहीं रोकेंगी आपको। आएंगी तो सही, हर एक की आती हैं, पर वो रुकेंगे नहीं। आप कहेंगे मारो कूटो मुझे वहीं छोड़ो। आपको था कि जब नबी सल्लम ने दीन की दावत दी तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक साथ साथ होते थे, तो एक ऐसा मौका था कि अल्लाह के नबी जब हरम में खड़े होकर दीन की दावत दे रहे थे ना, तो कुफ़ार मक्का टूट पड़े आपको मारने के लिए, तो अबू बकर सिद्दीक उनको बचाने के लिए बीच में आ गए। खबरदार, क्या कह रहे थे? अतक तुलूना रजुलन, क्या तुम एक शख्स को सिर्फ इसलिए कत्ल करते हो? अं यकूलु रब्बी अल्लाह, कि वो ये कहता है कि मेरा रब अल्लाह। इतना मारा कि वो लोग नबी सल्लम को छोड़कर अबू बकर को मारने लग गए कि अबू बकर सिद्दीक बेहोश हो गए। और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब उनको उठाकर लेकर आए तो उनके बाल इस तरह से नोचे हुए थे दुश्मनों ने, के हाथ लगाते थे तो उनकी लट्टों की लट्टें बालों की हाथों में आती थी। लेकिन ऐसे वक्त में भी जब अबू बकर सिद्दीक को होश आया तो उनकी ज़ुबान पे क्या था आपको पता? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हैं? फिर वहाँ पहुँच जाते थे, चोट नहीं लगती थी, दर्द नहीं होती थी, सब होता था, लेकिन मकसद का यकीन, मकसद का यकीन, यकीन की। जब तक हमें ज़ौके यकीन नहीं होगा तो हमारे रास्ते की जंजीरें नहीं टूटेंगी, क्योंकि जो हो ज़ौके यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। अगर अलादीन का जिन आपके सामने हाथ बांध के खड़ा आपके हुक्म का इंतज़ार कर रहा हो तो आप इसे क्या हुक्म देंगी? अब ये किरदार है अलादीन, जो भी उसको छोड़ दे, हम सब ने बचपन में पढ़ा हुआ है, हाज़िर हो जाता था फिर जो काम कराना है। मतलब यह है कि कोई फरिश्ता ही खड़ा हो जाए कि आप जो कहेंगी वो करूँगा, तो आप उसको क्या हुक्म देंगी? वो बुटीक में से फला नया जोड़ा मेरे लिए ले आओ, अम्मी नहीं लेके देती, मुझे गोल्ड का सेट ला दो, मुझे वो डायमंड की रिंग चाहिए, और मुझे आईफोन 6 चाहिए, 7 चाहिए, ये कहेंगी। क्या देखना चाहेंगे आप कि वो आपको क्या दिखाए? क्या बनना चाहेंगे आप और क्या पाना चाहेंगे? कौन सी जगहों की सैर करना चाहेंगे आप? कैसे किसे दोस्त बनाना चाहेंगे? कहाँ घूमना फिरना चाहेंगे? क्या तजुर्बात करना चाहेंगे? कौन से एहसासात जो आपने आज तक महसूस नहीं किए वो महसूस करना चाहेंगे? किस किस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ना चाहेंगे? किस कंपनी में आप जॉब करना चाहेंगे? कितने पैसे आप कमाना चाहेंगे? और किस प्रोफेशनल पोजीशन में आप बैठना चाहेंगे? किन मामलात में आप खुशकिस्मत होना चाहेंगे? यानी चंद सवाल है, हर एक के ऊपर हर एक सवाल फिट तो नहीं होगा, लेकिन आप क्या चाहेंगे? किस तरह के माहौल में जीना पसंद करेंगे? किस तरह का घर आप चाहेंगी? किस तरह के हमसाए हों आपके? किस किस्म का कल्चर हो? किस किस्म की आज़ादी हो? कोई ना पूछे, ना माँ पूछे, ना बाप पूछे, जो चाहें आप करें, जिधर चाहें आप जाएं। किस तरह की कम्युनिटी हो आपकी? किस किस्म की आपकी सहूलतें हों? किस तरह का मौसम आप चाहेंगी? किस किस्म का लाइफस्टाइल आप चाहेंगी? क्योंकि जब बंदे के हाथ में तकदीर का कलम दे दिया जाए तो वो तो यही चाहेगा ना, जो मैं चाहूँ वो होगा। वो लिखो जो मैं चाहूँ, जो मैं चाहूँ। तो आप मॉडर्न स्टाइल पर ज़िंदगी चाहेंगे या पुरानी? यानी आपको अगर चॉइस मिल जाए तो आप क्या मॉडर्न स्टाइल की लिविंग चाहेंगी या ओल्ड स्टाइल की? क्या आप गाड़ी में जाना चाहेंगी अपनी बस पसंदीदा जगह पे, या आप गाड़ी के बगैर किसी रिक्शे पे जाना चाहेंगी, या जहाज़ में, या हेलीकॉप्टर में? गाड़ी खुद चलाना चाहती हैं या आपका कोई ड्राइवर हो, यूनिफॉर्म हो? यानी हर एक सोचे, आइडियलाइज करना इसको। ये सारे जो सवाल है ना, इनको लिखे, ये आइडियलाइजेशन है। अब ये दुनियादारी की बातें हैं ना, माल, दौलत, घर, गाड़ी, ये वो, दिस दैट। लेकिन आप चूँकि स्टूडेंट्स हैं ना, और साथी हैं जो कुरान सीखते सिखाते हैं, हेल्प करते हैं, मुझे तब ये ख्वाब भी अजीब लगते हैं दिखाने। जो दुनिया का गोल है ना, वो हमारे पाँव की नोक के नीचे है। फेम, शोहरत, दौलत, माल, इज्जत, इनको क्या करना है? मैं आपको ख्वाब दिखाती हूँ, क्या आप क्या सोचती हैं? पूरे कुरान पाक की तफसीर आपको असबर हो, लफ्जी तर्जमा आपकी टिप्स पे हो, कोई कहीं कुरान की आयत सुने आप कहते हैं ये सूरत मोमिन की आयत है, कहीं कोई बात आए किसी की सामने तो आपको झट से उसके मुताबिक कुरान की आयतें 10 याद आ जाए। कितने लोगों का ये ख्वाब है? देखिए, अगर ख्वाब नहीं है तो आपको मिलेगा कभी नहीं, लेकिन अगर ख्वाब है ना, एक दिन आप इसको पाएंगी। शर्त एक है, पिछले सेशन में हमने बात की थी, कीमत देनी पड़ेगी। पहले ख्वाब देखें, फिर उसकी कोशिश करें, फिर उसकी कीमत दें। सारी दुनिया कुछ और करे, आपको अपने ख्वाब पूरे कराने हैं, फिर आप देखेंगे कि आपको फ़ायदा होगा। अगर हम अपनी अगली 5 साल ज़िंदगी को आइडियलाइज करें आज, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ें, और उनको आप इमेजिनेशन में बना लें। जैसे मुझे मालूम है कि कुछ लोग ऐसे हैं, किसी ने ऐसे शेयर भी किया था कि उनको अपना वेट लूज़ करना था ना, तो जैसे ये लोग कंसल्टिंग करते हैं या जैसे लोग भी फूड डाइट देते हैं, तो जब वो वहाँ गए तो उन्होंने उनको कहा कि मुझे करना है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि पहले तुम एक अपनी डमी, ऐसे जैसे एक वो फिगर सा बना के, जितना दुबला तुम खुद को देखना चाहती हो उसके ऊपर अपनी तस्वीर लगाओ, और इसको तुम वहाँ रखो जहाँ तुम्हारी अक्सर नज़र पड़े। होगा क्या भला? तसव्वुर में आएगा कि आज से 1 महीने, 2 महीने, 4 6 महीने बाद मैं इतनी स्मार्ट हो जाऊँगी, स्लिम हो जाऊँगी, तो फिर वो फालतू चीज़ें भी नहीं खाने को दिल करेगा। और डाइनिंग टेबल के ऊपर रख लें ऐसी तस्वीर बनाकर, तो पराठे का लकमा अंदर जाएगा कि बाहर जाएगा? नहीं अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि आपका ख्वाब है। इसी तरह एक और मुझे याद है कि एक क्लास थी, तो उसमें जन्नत की बात थी ना, तो उन्होंने कहा कि आप जन्नत के बारे में सुनने से पहले विजुलाइज़ करें कि आप जन्नत में फिर रही हैं, आप घूम रहे हैं, आप ऐसी जगह पे, आपका घर ऐसा होगा। यानी ख्वाब देखें। मैं अक्सर कहती हूँ आप लोगों से भी कि अपने घरों में जन्नत की बातें किया करें, अपने बच्चों से, बेटा तुम्हारा वहाँ बेडरूम कैसा होगा, तुम पिंक लोगी के पर्पल लोगी के ब्लू लोगी के रेड लोगी, अपने बच्चों को ख्वाब दिखाएं। फिर क्या होगा, उन ख्वाबों को पाने के लिए वो तैयार होंगे, मेहनत करेंगे। जब हम मुस्तकबिल के ख्वाब नहीं देखते ना, तो हमारी ज़िंदगी हर दिन पहले से भी अबतर हो जाती है। तो आज से आप अपना ख्वाब लिखें, आप अपने घर में अपनी गाड़ी पे बैठते हुए कंप्यूटर स्क्रीन पे जहाँ भी आपकी अक्सर नज़र पड़ती है वहाँ अपने ख्वाब बनाकर रखें, लिखें, सब कुछ देखें, छोटी से छोटी चीज़ें, बड़ी से बड़ी चीज़ें, और यकीन से देखें, और इन तस्वीरों को फिर तस्वीरों में बदलिए, और तस्वीरों को फिर चलती फिरती ज़िंदगी की फिल्म में बदलें, फिर आप देखेंगे कि आप काम करें। जब आप 5 साल के बाद देखेंगे कि हर रुकावट, हर बंदिश, हर उलझन, हर परेशानी और हर जंजीर से बच के आपकी ज़िंदगी बिल्कुल वैसी हो चुकी होगी जैसा आपने ख्वाब देखा था, आइडियलाइज़ किया था जिसको, तो आपको यकीन भी नहीं आएगा कि आपकी आंखें वो देखेंगी जो आप देखना चाह रहे थे, आप वो सुनेंगे जो आप सुनना चाह रहे थे, आप वो महसूस करेंगे जो आप महसूस करना चाह रहे थे, आपकी ईटिंग हैबिट्स बदल चुकी होंगी, आप कपड़े कैसे पहनना चाहती हैं फ्यूचर में वो कपड़े आपके बदल चुके होंगे, आप बिल्कुल अपने आप को इमेजिनेशन में देखेंगी वैसे ही होगा। और मैंने कई लोगों को बदलते देखा। सुबह मेरे सिर में एक लफ्ज़ पता नहीं क्यों घूम रहा था और उसका नाम था कल रात को गालिबन, यानी ऐसी कोई बात हो रही थी ना, तो इस्तकलाल, यानी हमारे कदमों में वो नहीं होती। इस्तकलाल को इंग्लिश में या अरबी में अज़्म कह लें, यानी हम कोशिश शुरू करते हैं किसी भी काम की बड़े जोश से, नई कापी खरीदेंगे, अब मैंने नोट्स बड़े अच्छे लेने हैं, अब मैंने कोई छुट्टी नहीं करनी, इस कोर्स में तो मेरे 100% मेरी रोल कॉल होगी, शुरू में बहुत लेकिन जम नहीं पाते। हम चंद दिन बाद खुद से किए हुए वादे तोड़ देते हैं। तो ऐसे लोग तो दुनिया में कहीं नहीं पहुंचते, यहाँ कहाँ पहुंचेंगे? ये तो अल्लाह की किताब है, ये तो आपकी जन्नत का सौदा होता है इस कमरे में बैठ के, ये आपका रास्ता जन्नत का रास्ता है। ये सबीलुल जन्ना नाम ऐसी थोड़ी है, सबीलुल जन्ना, इसके लिए आपको आज से फिक्र करनी पड़ेगी मैं कहाँ जाना चाहती हूँ। और आप जो सोचेंगी वैसे होगा। मसलन आप सोचिए कि फ्यूचर में मैं कहाँ रहूँगी। चलिए आप में से कुछ अनमेरिड बच्ची हैं ना, शादी तो अल्लाह ने चाहा तो हो ही नहीं है ना, तसव्वुर में लाएं मैं किस शख्सियत के साथ रहना चाहती हूँ, फ्यूचर में जब मेरी शादी होगी तो मैं अपने हस्बैंड में क्या खूबियाँ देखना चाहती हूँ। और जिन सिस्टर्स की शादी हो चुकी और वो ऐसे ही हुई जैसे सब की होती है, पेरेंट्स की मर्ज़ी, कुछ अपनी भी इतनी समझ नहीं थी उस वक़्त, अब आप चाहती हैं कि आपके हस्बैंड और आप दोनों चेंज हो। कुरान ने आपकी ग्रूमिंग कुछ कर दी, अभी बहुत कुछ होनी है। आप चाहती हैं कि आपके हस्बैंड भी हों। अब आप सब लिखिए, अनमैरिड बच्चियां लिखें कि मुझे किस किस्म के लड़के से शादी करनी चाहिए, और जो मैरिड सिस्टर्स हैं आप में से वो ये सोचें कि 5 साल बाद मैं अपने हस्बैंड को कैसा देखना चाहती हूँ। अब आपके दिन में एक लंबी सी दाढ़ी आ जाएगी है, और हमारे दिन में बस ही नहीं दो चार चीज़ों का खौफ आता है। लेकिन आप लिखिए, आज से 5 साल बाद जब मैं अपने हस्बैंड से बातें करा करूंगी तो कैसी बातें होंगी, मैं कैसी बातें करूंगी जब मैं अपने हस्बैंड से कोई बात करूंगी और मैं कुरान की आयत आदि भी पढ़ूंगी तो वो पूरी कर देंगे, तो मुझे कैसा महसूस होगा। ख्वाब देखिए, आपको एक दूसरे को गाने के बोल सुना कर मोहब्बत का इजहार करते हैं। आप हज़रत आयशा और हज़रत नबी सल्लम की मोहब्बत का तरीका सीखिए। हज़रत आयशा फरमाती थी मुझे अल्लाह के नबी पता लग जाता है, बल्कि अल्लाह के नबी ने कहा, क्या कहने लगी आयशा, कहने लगी अल्लाह के नबी मुझे पता है, आप नहीं, अल्लाह के नबी ने कहा आयशा मुझे पता चल जाता है तुम मुझसे कब खुश होती हो और कब नाराज। कहा कब खुश होती हूँ, कैसे? कहा जब तुम अल्लाह की कसम खाते हुए कहती हो ना रब्बे मोहब्बत, मोहम्मद के रब की कसम, तो मुझे पता चल जाता है तुम्हें मेरे से प्यार है या मुझसे खुश हो, और जब तुम कहती हो रब्बे इब्राहिम की कसम तो मैं समझ जाती हूँ आज तुम मेरे से नाराज़ हो। तो वहाँ तो इतनी मोहब्बतें थी, आप पढ़ें तो से हज़रत आयशा और अल्लाह के नबी की ज़िंदगी, क्यूपिड कपल, रोमांटिक कपल। आज क्या वो दूसरों के बोले हुए बोल आई लव यू कहकर 10 मैसेज जो कई जगह कहीं ने दूसरों को लिखे होंगे, सब ने ये लिखा होगा ओनली फॉर यू, वो मोहब्बत तो नहीं होती ना। लेकिन आप अपने आप को सोचें, फिर आप देखेंगे कि जब डेस्टिनेशन होती है ना, मुझे इस वक्त ये बात कहते हुए ऐसे लग रहा है जैसे आप अपनी गाड़ी के नेविगेटर में डायरेक्शन डालते हैं, ऐसे ही होता है कहाँ जाना है आपने, जब आप डालते हैं तो उसके बाद क्या होता है आपकी गाड़ी के नेविगेटर में, क्या आ जाता है, एक मैप आता है ना, खुद ब खुद वो आंटी जी बोलना शुरू हो जाती हैं, राइट हेयर गो देयर, ये करो वो करो, और वो मैप बनता है ना आपका, और आप देखें कि लोग बातें कर रहे होते हैं वो सिर्फ उसकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके, एंड पे वो कहते हैं योर डेस्टिनेशन इज़ ऑन राइट हैंड दिस एंड दैट, कहते हैं ना। बस ये काम इस वक्त आपने करना है, अपने जहन के नेविगेटर में अपनी सक्सेस को लिखिए, मुझे यहाँ पहुँचना है मैं पहुँच जाऊँगी। देखिए रास्ते में कितने बम्प आते हैं, कितने मोड़ आते हैं, कितनी रुकावटें आती हैं, लेकिन आप पहुँच जाते हैं ना अपनी डेस्टिनेशन पे, रुकते तो नहीं। कभी आपने कहा कि मैं सिर्फ उस जगह ज़िंदगी में जाऊँगी मेरे और उसके घर के रास्ते में एक मोड़ भी ना हो, तो फिर एक रोड के एक कोने से लेकर दूसरे पे तो आप चली जाएंगी, मुड़ेंगी नहीं। इसी तरह हमारी ज़िंदगी में बहुत से मोड़ आते हैं, और ये मोड़ क्यों आते हैं, अल्लाह ताला हमें देख रहा होता है कि हम कितने सच्चे हैं अपनी इस लगन में। और जिस जगह हम मुड़ जाते हैं ना घबरा के, नहीं मुझे नहीं जगह मिलेगी, मैं नहीं ढूंढ सकती, मेरे लिए इम्पॉसिबल है, मंजिल उसके बिल्कुल करीब होती है। कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आप एक ही जगह के गिर्द घूम रहे थे, घूम रहे थे, घूम रहे थे, वो चीज़ उधर ही थी, लेकिन आपको अंदर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था, और बाद में जब आप कोई कहते वो उधर, कहते उसके आगे से तो मैं 4 दफ़ा होके आई हूँ, अच्छा रास्ता किधर, कहते वो अंदर से ज़रा हल्की सी मोड़ मुड़े तो फिर वहाँ गली है, छोटी सी गली है ना, कि फिर आपको मिल जाता है। इसी तरह हमारी ज़िंदगी में कामयाबी हमारे इर्द गिर्द होती है, कभी हमें रास्ता नहीं मिलता, कभी हम रास्ते की मुश्किलात को सहना नहीं चाहते। आप अपनी ज़िंदगी की एक एक चीज़ को देखें, आज से 5 साल बाद मैं किन लोगों में उठी बैठूंगी, शहर के बहुत दीनदार लोग, बहुत बामल लोग, लोग मुझे किस नाम से पहचानेंगे, और आप कोई भी लिख ले, क्या मैं किसी मूवी स्टार के साथ बैठना चाहूँगी, या क्रिकेट स्टार के साथ, या मैं कोई सुपर मॉडल या गर्ल मॉडल, या कोई मैं बहुत ही खूबसूरत मॉडल बनना चाहती हूँ, क्या मैं शो बिज़नेस में आऊँगी 5 साल बाद, या मेरा स्टाइल कुछ और होगा, मैं किस किस्म के कपड़े पहनूंगी, मेरे जूते कैसे होंगे, मैं कैसी होंगी, अपने आप को सोचिए। देखिए इस्लाम का भी तो एक अपना स्टाइल है ना, इस्लाम को जब आप सामने रखते हैं तो आपकी ड्रीमिंग होती है। अपने घर को सोचें, आज मेरे घर में क्या कुछ भरा हुआ है, 5 साल बाद कैसा हो जाएगा घर, और आप देखेंगे कि जब आप सोचेंगे इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। फिर इसी तरह आप देखिए कि लोग जिस चीज़ को माल कहते हैं ना, मैं उसको तकवा कहती हूँ, क्योंकि जो काम लोग बहुत कुछ करके माल हासिल करते हैं ना, मालदार हो जाते हैं, दीन की इस्तलाह में बंदा तकवादार हो जाता है। और तकवा क्या होता है, 2 चीज़ें हैं तकवा में, एक तो बड़ा मारूफ है, सब ने बचपन से सुना, परहेजकारी, गुनाहों से बचना, डरना, ये सब कुछ, यानी तकवा में एक एंगल है गुनाहों से बचना, ये सबको पता है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये लग पाते फिर भी नहीं बच पाते, लेकिन सबको पता है मुत्तकी कौन है, परहेजगार। लेकिन तकवा का एक दूसरा एंगल बहुत कम लोगों को पता है, और वो बहुत बड़े बड़े ग्लासेस लगाए ना फिर दिखता है, और वो क्या, नेकियों के मौक़ों को देखना और अवेल करना, टू अवेल द अपॉर्चुनिटीज, ये बहुत कम लोगों को पता होता है। लोग जो नेकी कर रहे होते हैं ना उस पर बड़े खुश होते हैं, लेकिन जो नेकी छोड़ रहे होते हैं ना उसको उनका एहसास ही नहीं होता, कहते चलो शुक्र है कुछ तो कर रही हूँ, लेकिन वो बहुत कुछ छोड़ रहे होते हैं। आप देखिए जब हम एक छुट्टी करते हैं ना, हम उस एक छुट्टी के दिन कितनी चीज़ों से महरूम होते हैं। तजवीद के लेसन में शायद हमने 200 लफ्ज़ पढ़े हों उस सबक में, 200 को ज़रब दे दें 10 से तो कितने बन गए, इतनी नेकियां छुट गईं एक दफ़ा पढ़ने से। और मेरा नहीं गुमान कि आप एक दफ़ा पढ़ते हों, तजवीद में, लफ्ज़ी तर्जमे में, दोहराने में, आप उस दिन कुरान के लफ्ज़, मेरा ख्याल है कि 1000 लफ्ज़ पढ़ जाते होंगे। मुझे इस दफ़ा हैरत हुई, ये भी हमारा रिसेंट एक ट्रिप था यूरोप का, तो उसमें फ़्रांस में थी, तो वहाँ एक सिस्टर हैं जो उर्दू बड़ी फास्ट लिखती है ना टाइपिंग में, तो डिफरेंट लोगों को जो जॉब काम असाइन किए थे टीम के, तो उनमें से उनको इन्होंने इस दफ़ा सना ने कहा कि आप ऐसा कीजिए कि साथ साथ इनका लाइव लेक्चर टाइप कीजिए। खैर उन्होंने कहा ठीक है, वो पीछे बैठ गई क्योंकि उनकी टाइपिंग की आवाज़ आती थी, जितने फ्रांस में लेक्चर में सारे उन्होंने साथ साथ लिखे। जब फर्स्ट लेक्चर लिख के वो मेरे पास आई तो कहती है साजा आपको पता है आपने कितने लफ्ज़ बोले हैं, मैंने कहा कितने, इमेजिन करें 1 घंटे, मैं 50 मिनट, 45, 50, 60 तो दुआ शुआ के साथ चलता है, 10 लेक्चर जिसमें मैं अपने नॉन स्टॉप बोलती हूँ ना वो 50 मिनट के अंदर बाहर होता है, 45,000 लफ्ज़ मैंने बोले। और आप, मेरा गुमान है कि उन्होंने एक एक नहीं लिखा। आप मेरे साथ बैठ के नोट्स लेंगे तो क्या एक एक लफ्ज़ लिखते? एक एक लिखने के लिए तो आपको रोकना पड़ता है, पॉज देना है, फिर जुमला पूरा करें। वो तो आप 1 घंटे का लेक्चर 6 घंटे में लिखेंगे, और उन्होंने बकौल सारा लिखा है, लेकिन उन्होंने जो लिखे वो 45,000 लफ्ज़ लिखे। मैं तो कांप के रह गई। मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैही रक़ीबुन अतीद। अल्लाह ताला सूरह क़ाफ़ में कहते हैं, जो एक लफ्ज़ भी तुम निकालते हो ना, उसको भी हाजिर बाश फरिश्ता फ़ौरन लिख लेता है। तो कल क़यामत के दिन हम कैसे अपने बोले हुए लफ्ज़ों का इनकार करेंगे? तो जब वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? इसलिए अपने आप को आइडियलाइज करें। आप अपने बच्चों को देखिए। अब अगला तसव्वुर आप अपना लाइए बच्चों का, 5 साल बाद मेरे बच्चे कैसे होंगे? देखिए, हर एक के बच्चे छोटे भी हैं, बड़े भी हैं। आप सबसे छोटे बच्चे की भी उम्र लिख लें और सबसे बड़े की भी। और अक्सर लोगों के मुंह से मैंने ये बात सुनी है, कुरान सीखने के दौरान अल्लाह ताला फिर बेबी को देता है तो कहते हैं ये बेबी बिल्कुल फ़र्क है दूसरों से। अब इसकी तरबियत हम वैसे करेंगे जैसे हमने कुरान पढ़ के सीखी है। बड़े बच्चे अब हमारे काबू में नहीं है, हमने उनका हक नहीं दिया, हमने उनको वक्त पे नहीं रोका टोका। लेकिन आप ख्वाब देखें अपने बच्चों के, कोई चीज़ दुनिया में नामुमकिन नहीं है, यकीन कीजिए, मुमकिन है। आप भी बदल सकती हैं, आपके बच्चे भी बदल सकते हैं, आपके हस्बैंड भी बदल सकते हैं। हर चीज़ को बदलते जाएं, सोचते जाएं, सोचते जाएं। फिर इसी तरह आप सोचिए, इस वक्त आप और मैं नॉर्वे में बैठे इस क्लासरूम में, आप सोचिए कि आज से 5 साल बाद मैं दीन के नाम पे, यानी वैसे तो हम सारी दुनिया घूमे जहाँ भी, लेकिन चूंकि हम इस वक्त अपनी सक्सेस देख रहे हैं ना, तो मैं दीन के नाम पर किस मुकाम पे पहुँच चुकी होंगी। मिसाल देती हूँ कि मैं अगर अपनी मिसाल आपको दे दूँ, अभी 2 वीक पहले एक बड़ा खूबसूरत एक्सपीरियंस हुआ। हमारा एक ऑनलाइन कोर्स है था अल्हम्दुलिल्लाह, अब तो लास्ट ये फ्राइडे नहीं, उससे पिछले फ्राइडे को उसकी कम्प्लीशन हुई। ये हमारा 2nd ओल्डेस्ट कोर्स था। सबसे पहला जो ऑनलाइन कोर्स, जो बेग कोर्स था, 4 घंटे की तफसीर होती थी शायद, वो रब का पैगाम मेरे नाम था। जब हमने वो शुरू किया, कुछ अर्सा हो गया पारे शुरू हुए, तो फिर एक वंस अ वीक क्लास शुरू की थी, तो उसका नाम हमने रखा था रब का पैगाम उम्मत वसत के नाम। 8 साल में वो कोर्स पूरा हुआ माशाल्लाह। लास्ट 2 वीक पहले मैं उस दिन आयरलैंड में थी, और हम लोग डबलिन में थे, और डबलिन से कॉर्क शाम को जाना था। उस दिन वो कोर्स ऑनलाइन पूरा हो रहा था, तो साथियों की रिक्वेस्ट थी कि आपने हमारे साथ ज़रूर रहना है, और ऑफ कोर्स वैसे भी मेरी ख्वाहिश होती है ऑनलाइन क्लासेस में थोड़ी बहुत बात करूँ, और स्पेशल डेज़ में तो ज़रूर बुलाते हैं। मैंने कहा आप मुझे ढूंढते रहिए फ़ोन पर तो होगा। खैर, जब हमने डबलिन का सुबह का लेक्चर पूरा किया, हमारी एक और स्टूडेंट थी उनके घर पे हम सारे ही थे इकट्ठे लंच के लिए, तो वहाँ उसका टाइम शुरू होना था 3 बजे के करीब। हमने उन्हें कहा कंप्यूटर दे, कंप्यूटर खोला, वो क्लास शुरू हुई। वो सारी सुन रहे थे अपनी बात, ये कब शुरू हुई कैसे, उसी में उन्होंने सारी डेट्स बताई, इतने पारे तब हुए, इतने तब हुए, ये हुए। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे लिया, तो फिर मैंने माइक लिया तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि वो पुरानी आईडीज़ और ये वो कर करा के, खैर 15-20 मिनट मैंने उनसे बात की। फिर मैंने उनको ये बताया कि जिस दिन ये कोर्स, और मैं वो लाइव क्लास लेती थी, वो मैं अमेरिका में थी, सिर्फ मैं लेती थी घर से, यानी ऑनलाइन ही थी, वो अमेरिका की रात होती थी या सुबह थी, एनीवे यानी वो ओनली ऑनलाइन कोर्स था, वंस अ वीक था। फिर उसके बाद जब मैं 5 साल पहले ओस्लो आ गई, मूव हुई, तो फिर दिन रात का फ़र्क हो गया, कुछ इधर की क्लास का टाइम, कुछ उधर की, करते कराते फिर हमने उसको इधर की सवीलुल जन्ना के साथ सेट किया। यानी उस क्लास ने हमारे बड़े डार्क, वो कहते हैं अप्स एंड डाउन्स देखे, क्योंकि ना तब इतनी भरपूर रिकॉर्डिंग होती थी, ना एडिटिंग थी, वो तो चीज़ें थी ही नहीं जो अब है अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर मैंने उन्हें कहा कि मैं आपको सुनाती हूँ कि जिस दिन मैंने ये कोर्स शुरू किया था उससे लेकर आज के दिन तक मेरी ज़िंदगी में क्या कुछ आया। मोटी मोटी मैंने उनको 8 साल की कहानी सुनाई। तो मैंने कहा जैसे मैंने ये कोर्स शुरू किया था, मेरे वहमो गुमान में लव्स आयरलैंड भी नहीं था, ना मुझे डबलिन पता था आयरलैंड की, तो वहाँ एक स्टूडेंट, उसकी वजह से काम हुआ। फिर उसके बाद खैर सब इमोशनल थे, साथियों ने भी बातें की। उसके बाद उन्होंने आगे कैरी ऑन किया, उन्होंने मुझे कहा कि अब हमने आपको एंड पे भी ज़रूर साथ रखना है दुआ के लिए। मैंने कहा ठीक है, हम जहाँ होंगे फ़ोन करना। अब ये कर करा के हम नमाज़ पढ़ के डबलिन से निकले कॉर्क के लिए, तकरीबन 2.5 से 3 घंटे की ड्राइव है। बिल्कुल जब मिड पे पहुँचे तो फ़ोन आने शुरू हो गए कि अब उधर क्लास पूरी हो रही है, आप दुआ करनी है, करानी। मैं कल लाएँ कराते हैं फिर क्या। मैं पूरे दिन की थकी हुई थी तो मैं पीछे हल्के लीन कर रही थी लेट के, जैसे आप पाँव भी ऊपर करके थी। मैंने कहा मुझे फ़ोन पकड़ा है। मैं कॉर्क से डबलिन से कॉर्क के रास्ते में गाड़ी में लेटी हुई एक किस्म की फ़ोन पे उनके सब बातें कर रही, और उनको मैंने पहले ही बता दिया कि पीछे आवाज़ें हैं, हाईवे पे हम फुल स्पीड जा रहे हैं, और आप में से जो गया आयरलैंड वहाँ हवा बहुत चलती है, गाड़ी यूँ बजती है, यूँ विंड है बहुत ज़्यादा, क्योंकि पानी के अंदर है ना तो चारों तरफ से हवा आती है। किस्सा मुख्तसर के वो दुआ जो मैंने उस वक्त करवाई, और हम रास्ते में और जब बाकी लोग गाड़ी में थे, बाद में उनका फीडबैक था कि आज हमारी ज़िंदगी की ये सबसे अमेजिंग दुआ थी जो आज हमने सेशन लिया। तो अगर मैं कहती मैं रास्ते में हूँ, मैं सफ़र में, सॉरी आई एम नॉट अवेलेबल, तो क्या है वो खुद कर करा लेते। लेकिन वो जो मैंने इंजॉय किया, और जो मैं, और मैंने साथ कह भी दिया कि मेरी ये पोजीशन है और इसको ऐसे ही रखिएगा, हमने कोई स्टूडियो रिकॉर्डिंग थोड़ी करनी है, ताकि लोगों को ये सिखाएं हम सब के हर हाल में दीन का काम करना, असल ये बात है। कोई चीज़ आपके रास्ते की रुकावट नहीं बननी चाहिए। और आप देखिए कि अभी तो आप बच्चे हैं, बच्चे से मुराद है कि अभी आपका 8वां 9वां पर है, अभी बड़ा लंबा सफ़र है। अगर आपके अंदर जोश और जज्बे नहीं होंगे ना, तो फिर आप कहीं ना कहीं रोक लिए जाएंगे। एक इंसान जब अपने आप को अल्लाह के हाथों में दे देता है ना, तो अल्लाह ताला मुश्किलात को आसानियों में बदल देता है, इम्पॉसिबल आई एम पॉसिबल में बदल जाता है। अल्लाह के हाथों में खुद को दे के देखें, ख्वाब बड़े से देखें, कोशिश भरपूर करें और नियत अच्छी रखें, इरादे भी बड़े रखें और इंजाम अल्लाह के हाथ पर डाल दें। वो कहते हैं ना कि निगाह बुलंद हाई राइस, बड़े बड़े ख्वाब देखे ज़िंदगी में। आप क्यों कहते हैं कि आपने बस ऐसे ही जी के 4 दिन पढ़ के जॉब करके शादी करा के 2-4 बच्चे पाल के दुनिया से चले जाना है, ये कोई ज़िंदगी है? क्या मिलेगा आपको उसके एंड पे? कामयाबी तो कुछ लोगों को मिलती है दुनिया की भी, जिनको मिलती है वो शादी के बाद पढ़ते ही नहीं है, शादी के बाद वो जॉब ही नहीं करते, पढ़ा कुछ होता है जॉब कुछ और करने लगते हैं। वो कामयाबी लेनी है मैंने और आपने जिसके बाद नाकामी का तसव्वुर भी ना हो। औलाइक हुमुल मुफ्लिहून, यही लोग हैं जो फलाह पाने वाले हैं, कामयाबियाँ पाएंगे, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। आप कहते हैं मैंने फ़र्स्ट क्लास ज़िंदगी बसर करनी है, अल्लाह आपसे फ़र्स्ट क्लास काम लेगा। आप कहते चलो अल्लाह कुछ तो करा ले, जैसे मुझे याद है किसी के बच्चे नहीं थे तो कहती थी अल्लाह मुझे बेटी दे दे, तो मैंने कहा क्यों, अल्लाह के पास बेटों की कमी है? मेरा होता कि चलो बेटा नहीं नसीब है तो बेटी ही दे दे। मैंने कहा आप मांगे अल्लाह से, अल्लाह मुझे बेटा ही दे बल्कि 2 बेटे इकट्ठे दे। क्या अल्लाह के पास को बेटों की कमी है कि आप चले बेटी पर राजी हो रहे? आप बड़ी चीज़ मांगिए, फिर जो मर्ज़ी अल्लाह दे। तो ख्वाब बड़े देखेंगे, इरादे बड़े देखेंगे, आप देखेंगे कि उसके साथ ही साथ आपकी ज़िंदगी में ख्वाब बड़े देखने के बाद फ़ायदा होगा, कोई चीज़ आपके रास्ते की इंशाल्लाह रुकावट नहीं बनेगी। और याद रखिए कि ज़िंदगी का मकसद लेना नहीं है, देना है। अब चंद बातें अपने फ़ायदे की सोच लें। हम सोचते हम लेंगे तो फ़ायदा लेंगे ना, नहीं। आप कहिए कि मैंने 5 साल बाद इस सोसाइटी को कुछ वापस करना है, पे बैक करना है। मैं कितने पैसे खैरात करूंगी, मैं कितने लोगों को पढ़ाऊंगी, मैं कितना डोनेशन दूंगी, मेरा सदका जारिया कितना होगा, मैं कितनी जगहों पे दीन के नाम पे हिस्सा डालूंगी, मैं कितने गरीबों के बच्चों को स्पॉन्सर करूंगी, क्या क्या जो भी है। आप ये अच्छे अच्छे ख्वाब भी लिखिए। कामयाबी का हतमी हदफ खुद मज़े उड़ाना नहीं, बल्कि दूसरों को अपनी कामयाबी के समरात में शामिल करना है। ये तो काम आप कर रहे हैं ना कुरान सीखने का, ये आपको इस काबिल कर रहा है कि आप दूसरों को भी अपने पढ़ने का फ़ायदा देंगी। पैसा, खुशहाली, मुआशी आज़ादी का सही मज़ा तभी उठाया जा सकता है जब इससे किसी और को भी फ़ायदा उठाने का मौका दिया जाए। ये मत भूलिए कि ज़िंदगी लेने वालों से लेती है और देने वालों को और भी ज़्यादा देती है। जिन्होंने कुरान पढ़ा हुआ उनको कोई याद आ रही है कुरान की? चलिए मैं सूरत का नाम ले लेती हूँ, सूरत रात। वाम मामा यन फासु वाम मामा यन फाउन नासा वयम कुस सूरत रात, जो लोगों को नफ़ा देगा ना वही बचेगा। अल्लाह हमें नफ़े वाला कर ले, ऐसा दरख्त बने कि जिसका फल उसकी दुनिया से जाने के बाद भी लोगों को फ़ायदा देता रहे, फिर लोग आपको याद रखेंगे। आज लोग न्यूटन को क्यों याद करते हैं? क्योंकि उसने कुछ दिया। उमर को, अली को, उस्मान को, सहाबा को क्यों याद करते हैं लोग? क्योंकि उन्होंने इंसानियत को कुछ दिया। जब हम देते कोई नहीं ना, तो थोड़े दिन बाद लोग खुश होते हैं, चलो अच्छा जगह ख़त्म हुई, निकले इसकी जगह कोई और आ जाए, फिर इंशाल्लाह आप फ़ायदा करेंगे और जित फ़ायदा मिलेगा आपको। और अगर आप ये सब कुछ करगे तो आप देखिएगा कि बड़े बड़े समंदर भी भीग जाएंगे और मुश्किल आपके रास्ते की रुकावटों को अलग करेंगी। बाद लोग कहते हैं ये शेख चिली के ख्वाब है, छोड़ो ऐसे ख्वाबों में रहते हैं, नहीं बनाएं। आज जाके अब सब अपना गोल बनाएं, बिल्कुल इंडिविजुअल बेस्ड। हर एक का फ़र्क भी हो सकता है, और एक एज के और एक माहौल में होने के जैसे सेम भी गोल हो सकते हैं, फिर उसको जम जाए लेने के लिए, फिर आप देखिएगा इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। लोग कुछ भी करें आपको क्या लगे, लोग किसी अंदाज से जिएं आपको क्या लगे, आपका एक अपना स्टाइल है। इट्स माई स्टाइल, इट्स माई लाइफ। आज तो लोग यही सुनाते हैं इट्स माई स्टाइल, तो आप कहते हैं इट्स माई स्टाइल, इट्स माई चॉइस। यस इट्स माई चॉइस। हु आर यू? आई एम आई, मैं हूँ, आपको क्या लगे। जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा ना, कोई आपको नहीं रोक सकेगा। और फिर अपनी ज़िंदगी से नेगेटिविटी निकाल दें, ये भी लिख लें। मनफी जज्बे रखने यानी नेगेटिव अप्रोच रखने वाले कामयाब कभी नहीं होते। आज से इस सफ़े को फाड़ दें कि दुनिया में कोई आपका दुश्मन भी है, कोई आपका हासिद है, कोई आप से नफ़रत करता है, कोई आपको नापसंद करता है। ये सब सफ़े फाड़ दें। आप लिखें दुनिया का हर इंसान मुझसे प्यार करता, कोई मेरी बुराई नहीं करता, कोई मुझसे हसद नहीं करता। अब मैंने लोगों को देना है, और आप देखेंगे कि जिस दिन आपके दिल में सच्चाई आएगी ना, तो लोग भी आपसे सच्चे ही प्यार करेंगे। हमारी आने वाली ज़िंदगी के लिए हमारे पास दो ही रास्ते हैं। आने वाली ज़िंदगी का सामना करें खदशात के साथ, तफक्कुरात के साथ, बेयकीनी के साथ और कन्फ्यूजन के साथ। लोग कहते हैं आई एम कन्फ्यूज्ड, समझ नहीं आता क्या करूँ। या फिर आप अपनी ज़िंदगी का सामना कर सकते हैं प्लानिंग के साथ, तैयारी के साथ और मंसूबे के साथ और लाहे अमल के साथ और दूरबीनी के साथ। ये अब आपकी मर्ज़ी। कन्फ्यूजन के साथ सोचेंगे ना तो आप कन्फ्यूज़ रहेंगे, और जब आप प्लान करके ज़िंदगी करेंगे तो आपको होगा। फ़ैसला आपके हाथ में है, आपने ज़िंदगी को डिज़ाइन करना है या इसे इसके हाल पर छोड़ देना है। इस वक्त जो तसव्वुराती घोड़े दौड़ाने की कोशिश में हम हैं, ये ज़िंदगी को डिज़ाइन करने की तरफ पहला कदम है। अपनी ज़िंदगी के मास्टर डिज़ाइनर तो आप ख़ुद ही हैं, तो फिर 5 साल के बाद आपका डिज़ाइन अगर मंजूर हो जाए, अल्लाह की कबूलियत की मोहर इस पर लग जाए, तो आपकी ज़िंदगी क्या होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई फ़रिश्ता आपके पास आए और कहे कि हुक्म कीजिए, तो आप कहें कि मेरे पास तो तुम्हें बताने के लिए कुछ है ही नहीं। हमें अपनी ज़िंदगी को भरपूर जीना है। डिप्रेशन, तकलीफ़, दुख, बीमारियाँ ये मुसलमानों को नहीं होती, ये कुफार के सर दर्द है, जिनका अल्लाह पे ईमान नहीं है, जिनको अल्लाह पे ट्रस्ट नहीं है। अल्लाह से दुआ करते हैं कि बस वो हमें अपने साथ जोड़े। अच्छा आप कहेंगे इतनी ज़रूरत आती कैसे? अल्लाह के साथ मजबूत ताल्लुक से। जितना आपका अल्लाह के साथ रिश्ता पक्का होता जाएगा ना, आप रूहानी तौर पे स्पिरिचुअली स्ट्रांग होते जाएंगे। और जितना अल्लाह के साथ आपका रिश्ता पक्का होता है ना, अल्लाह की मखलूक के साथ भी आपका ताल्लुक़ जुड़ता है। शर्त एक है कि अल्लाह की मर्ज़ी के अंदर रहते हुए आप उनके साथ मामला रखें। जैसे तेज़ कटाव वाली पानी की नदी के किनारे सख्त पत्थर के अंदर उगने वाला नन्ना मासूम सा पौधा पानी के जानलेवा थपेड़ों के बावजूद टूटता नहीं है, टूटता नहीं है, मरता नहीं है, ख़त्म नहीं होता, महज इसलिए कि वो इस पत्थर में मजबूती से जड़ें पेवस्त किए होता है। बिल्कुल इसी तरह जब आपकी जड़ें अल्लाह की हस्ती के साथ मजबूती के साथ पेवस्त हो जाती हैं तो रोज़मर्रा की तकलीफ़ें, नाउम्मीदियाँ, मुश्किलात और नाकामियाँ आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हालात के तुंदो तेज़ कटाव, थपेड़े और हरबे आपको खड़ा रखते हैं, मजबूत रखते हैं। अल्लाह के साथ इस तरह मजबूती से जुड़े रहना आपको गिरने नहीं देता। लेकिन रिश्ते की इस मजबूती को आप 5 साल में कैसे हासिल करेंगे, क्या तरीक़ा अख्तियार करेंगे? मेरा ख्याल है आपका ये कुरान 5 साल में पूरा हो जाएगा, उससे भी पहले हो जाएगा इंशाल्लाह। आप नूरुल्ला नूर भी कर रहे होंगे। आज से अपनी ज़िंदगी का ये गोल बनाएं कि मैंने अल्लाह के साथ ताल्लुक़ को मजबूत करना है। यकीन करें कोई नहीं है हमारा उसके सिवा, और ताल्लुक़ बिल्ला इतनी बड़ी ताकत है जो काम पैसों से नहीं होते। सोने चांदी को देकर जो चीज़ें नहीं मिलती ना, वो अल्लाह के साथ मजबूत ताल्लुक़ के साथ होने लगती हैं। और इंशाल्लाह आप इस पे जब ज़ोर देंगे ना, तो इसका रास्ता जो है वो फिर नबी सल्लम की ज़िंदगी से गुज़रता। आप अल्लाह से ताल्लुक़ की बुनियाद पर तो इतने स्ट्रॉन्ग थे कि हर जंग में दुश्मनों से कम होने के बावजूद फतह आपकी हुई। और जिस वक्त आपको ये यकीन हो जाएगा कि अल्लाह आपके साथ है, तो आप ज़िंदगी के बड़े बड़े चैलेंजेस को खुशी के साथ कबूल करेंगे कि बस मैंने भी ये करना है, मेरा रब करवाएगा और हो जाएगा। तो अब आप ख़ुद सोचिए कि आप आज से 5 साल बाद कहाँ होंगे। कोई आप में से शेयर करे कि आपके जहन में कोई तसव्वुर आया जी। आयशा जमील, आप 5 साल बाद कहाँ होंगी? देखिए, एक तो है गैब की बातें, उसको तो हम कोई नहीं जानते कि आप नॉर्वे में हैं या आप स्वीडन चली जाएंगे या डेनमार्क, इससे फ़र्क कोई नहीं पड़ता। मैंने तो दुनिया घूम के यही देखा है, हर जगह जाकर एक ही चीज़ समझ आई है कि दुनिया अल्लाह की है, ज़मीन अल्लाह की है और हम उसके हुक्म के बंदे हैं। लेकिन आप अपने कामयाबियों पे सोचें जी।
मेरी दुआ है मेरी ये मेरे साथ के लिए भी कि जो
इस्लाम में
सफर शुरू किया कुरान का, वो हम कंप्लीट कर।
यू वांट टू टॉक टू सामा?
ओके,
होल्ड ऑन प्लीज, ही विल कॉल यू बैक। ओके,
ये बात बहुत अच्छी लगी कि जब कोई आयत पढ़ी जाए तो हमें पता हो कि सूरह की ऐसी क्या तफसीर है।
यकीन करें ये इतनी बड़ी दौलत है ना कि आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। मेरा ख्याल इस सर को दे दें, कहने फ़ोन आ रहा है आपका, कर लें। कि मेरा ख्याल है कि इससे बड़ी दुनिया की दौलत कोई नहीं। मैं कह सकती हूँ कि लखपति, करोड़पति, मिलियनेरियन, बिलियनेरियन लोग वो खुशी नहीं पा सकते जो आपको कुरान की एक आयत समझ के खुशी मिलती। पारे से देख के नहीं, बस ऐसी जैसे इस वक्त आपको मेरी उर्दू समझ आ रही है।
इरादा करते हैं ना हम वही करते हैं। मैंने बहुत साल पहले सोचा था कि मैं कोर्स करूँगी, लेकिन मुझे नहीं था पता कि ये किस तरह होगा, मैं कब करूँगी। लेकिन वो बस अचानक मैंने साइन किया, उसके बहुत साल बाद मैंने साइन किया था इस कोर्स के लिए। लेकिन वाकई में जिस चीज़ का हम सोचते हैं कि हम करेंगे, हम सिर्फ वही कर सकते हैं। अगर हम ना सोचें तो वो खुद नहीं हो जाता कुछ।
आपकी शादी पर मैं गई थी तो, लेकिन मेरे दिल में अंदेशे थे बड़े, क्योंकि मैंने देखा है कि बड़ी अच्छी अच्छी बच्चियाँ क्लासेस में बड़ी अच्छी होती हैं। शादी तो छोड़ें, मंगनी हो जाए बस, तो बस वो हालात, दिल, सोच ही बदल गए। तो आपको मैं आता देखती हूँ तो मुझे पहले से ज़्यादा खुशी होती है। और अल्लाह ना करे कभी आप रुके। कोई आपको लगता है शादी रुकावट है?
ये आपके अपने पे होता है कि आप किस चीज़ पर रुकावट ना, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें चलती रहती हैं, जो भी चलती है। आप अपने माँ बाप से भी मिलते हैं, आप दोस्तों से भी मिलते हैं, आप जो काम आपने पहले नहीं किए होते, वो हमारे माँ बाप हमें बहुत लाडा रखते हैं अपने घरों में, तो हम कुछ भी नहीं आता होता, सब कुछ दिनों में सीख लेते हैं। घर को संभालना, आइडिया पाना, हर एक चीज़ सीख लेते हैं। तो अगर इसका इरादा हो तो ये भी
मुमकिन है जी, वरना नए रिश्तों को निभाना ही बड़ा मुश्किल लग रहा होता है, लोगों को समझना करना। जिस दिन आपको यकीन होगा ना, आपको कोई नहीं रोक सकेगा
इंशाल्लाह। बात ये कि मुझे ये, मैं अभी भी बहुत शुक्र कर रही थी कि मैंने शादी से पहले ये शुरू किया था, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा इस चीज़ का फ़ायदा हुआ। मैं हर चीज़ पर पूरा अमल शायद नहीं कर सकती, लेकिन कोशिश करते हैं। लेकिन यह है कि आपको बहुत ज़्यादा गाइडलाइन मिल जाती है कि आपने किस तरीके से चलना है शादी के बाद।
खुशकिस्मत है वो लोग जिनको अपनी नई ज़िंदगी शुरू करने से पहले कुरान मिल जाए।
आपको अपनी गलतियों का एहसास होता रहता है, अगर आपसे कोई गलती भी हो जाती है तो आपको समझ आ जाती है कि अल्लाह ताला मुझे ऐसा वाइफ, अल्लाह ताला मुझसे क्या चाहते हैं, क्योंकि पहले मुझे इन चीज़ों का नहीं पता था। अगर इससे पहले मेरी शादी हो जाती तो मेरी सोच बिल्कुल और थी।
बिल्कुल सही कह रही है। यानी एक माँ थी तो वो अपनी बच्ची के लिए परेशान थी ना कि रिश्ता नहीं हो रहा ये, और बच्ची अभी नहीं इधर उधर की टाबक टोई में। तो मैंने उन्हें कहा कि देखें आप खुशकिस्मत है कि अभी आपकी बच्ची का रिश्ता नहीं हुआ, आपकी बच्ची इस वक्त वो राउंड अबाउट से घूम रही है, उसकी अपनी सोच बन रही, उसकी एक सोच बन लेने दीजिए ताकि जो रिश्ता मिले फिर वो उसकी सोच के मुताबिक हो। अगर ये अभी रिलीजियस नहीं हुई, रिलीजियस मिल गया तो ये अब परेशान होगी, नॉन रिलीजियस मिल गया आगे जाके ये रिलीजियस हो गई तो परेशानी है। इसको ज़रा एक किनारे पे आने दीजिए, फिर अल्लाह जैसी ये होगी इसको वैसा रिश्ता दे देगा। जी नेक्स्ट, अम्मारा आपका नाम, आप बहने हैं ना? नहीं, ओके जी, नेक्स्ट प्लीज़।
मैंने ये सीखा आज कैसे से कि नेवर गिव अप, कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत जल्दी गिव अप कर देती हूँ, और वही बात है कि अक्सर बंदा ज़्यादा परेशान हो जाता है, हालात मुश्किल होते हैं लेकिन बंदे को ज़्यादा परेशानी होती है, और जब बंदा उससे गुजर जाता है ना तो बाद में पता चलता है उफ़ ये तो इतना आसान
इतना
था।
आसान था, और जब गुजर जाते हैं यकीन ही नहीं आता, हाय ये पहाड़ गुजर गए, क्या क्या रास्ते में आते हैं और बंदा गुजार देता है।
तो वही बात है कि सबके लिए भी यही है कि नेवर गिव अप, और ये कि जाहिर से बात है बाद में जब बंदा काम नहीं करता तो रिग्रेट होता है, बहुत रिग्रेट होता है, इस चीज़ को मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ।
अल्हम्दुलिल्लाह जी, जज़ाकअल्लाह। नेक्स्ट
जी, मैंने यही सीखा कि इंसान को अपने आप को आइडियलाइज करना चाहिए, उसके लिए फिर हिम्मत नहीं हारनी
हिम्मत
चाहिए।
नहीं है जी, मशीज़ा
जी, मैंने यही सीखा कि कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि जैसे महाराज ने अभी बोला कि अगर हम कोई काम करते हैं ना, फॉर एग्जांपल मेरा कोई भी पेपर होता है, मुझे कोई क्वेश्चन आ रहा हो तो मैं सोचती हूँ, और अगर ना आए बाद में आपके टीचर्स पर मुझे बताते हैं कि तुम्हें कैसे करना था, या फिर मैं कहती हूँ ये तो इतना आसान था मुझे पहले क्यों नहीं पता चला, तो वाकई में वो चीज़ आसान होती है लेकिन हमें नज़र नहीं आ रही थी कि वो कितनी आसान है चीज़।
सही जी, आप
जी, मैंने ये सीखा है कि अगर आप सबसे पहले तो एक गोल बनाएं और उसके मुताबिक चलें, और थोड़ा थोड़ा हर रोज़ करें और उसी के मुताबिक चलें, क्योंकि अगर उसके मुताबिक नहीं चलेंगे तो आगे पीछे आप भटक जाएंगे।
जी, मैंने ये सीखा कि अपनी ज़िंदगी को या फिर ऐसे छोड़ दूँ या फिर इसको बदल दूँ, तो मैंने क्या करना है, और ये कि कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं होती है। मैंने ये सीखा है कि मतलब अपने लिए छोटे ख्वाब नहीं देखने, अपने लिए बड़े बड़े ख्वाब देखने, और यकीन रखना है कि आप अगर कोशिश करते रहें तो वो ख्वाब एक दिन पूरे होंगे।
बिल्कुल,
और ऐसी बहुत मुझे बहुत कोई चीज़ अच्छी लगी थी, क्योंकि ऐसी जगह मतलब अपने गोल्स को अपने सामने कि हर वक्त आपको याद आता रहे कि ये मेरा मतलब मिशन है, ये यहाँ पर मैंने पहुँचना है, क्योंकि हम लोग अगर सोचते हैं तो अगर वो हमें चीज़ बार बार याद ना मतलब आए तो हम भूल जाते हैं कि हमारा असल हम किस तरफ जा रहे हैं। तो ये मैंने सोचा कि इंशाल्लाह मैंने अपने लिए ना ऐसा कुछ
करना
है कि
जो हर वक्त बड़े ख्वाब देखें, छोटे नहीं देखने। और अगर आप कभी बच्चों की आपस की बातें सुना करें, वो बड़े बड़े ख्वाब देखते हैं, आप पीछे दे दीजिए इनको।
मैंने ये सोचा कि हर हाल में दिन का काम करना है, अगर दुनिया में कोई चीज़ मेरे दिन के काम में रुकावट आई तो उसको इग्नोर करना है, पहले दिन के काम को आगे
रखना। इंशाल्लाह जी, आप वैसे गलत जगह पे बैठी हुई हैं। जो सोचेंगे वो हो जाएगा, बिल्कुल पीछे दे दीजिए उनको, वहीदा को दे दें।
सर आपसे तो मैंने बहुत कुछ सीखा है, आपके लिए तो मेरे दिल से दुआएं निकलती है। बस अल्लाह ने मुझे बीमार किया था 5 साल बाद, 5 साल बाद अल्लाह ने दोबारा हिदायत दे दी
अल्हम्दुलिल्लाह।
लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बस आज भी जब मैं आई हूँ तो घर के सारे काम मुकम्मल, घर में एक सिस्टम सा बन गया है और सब कुछ। बस अल्लाह दिल से आपके लिए बहुत दुआएं निकलती है, और बस मेरा ख्वाब ये है कि लेकिन इन 5 सालों में मुझे नॉर्वेजियन के साथ बहुत कुछ करने को मिला, तो मेरा यही ख्वाब है कि नूरुल कुरान की अगली क्लास जो हो वो खास कर नॉर्वेजियन के लिए हो, कि अल्लाह उनको भी हिदायत।
आमीन सुम्मा आमीन इंशाल्लाह जी। आप सिद्रा,
मैंने ये सीखा है कि जो कामयाबी होती है वो हमारे इर्द गिर्द भी होती है, और हमें उसको कोशिश करनी चाहिए, रास्ते को ढूंढना चाहिए, और अच्छी नीयत के साथ और अच्छी कोशिश के साथ जो है ना खुद को جو ہے نا جتنا ہمارے بس میں ہم وہ کریں اور باقی سب اللہ کے ہاتھ میں چھوڑ دیں. تو جب ہم اللہ کے ہاتھ میں چھوڑ دیں گے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ناممکن بھی جو ہے نا وہ
ممکن ہو جائے گا بے شک.
جی میں نے یہ سیکھا ہے کہ اگر انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق زبردست کر لے گا تو پھر کوئی بھی مشکل اس کی زندگی میں رکاوٹ نہیں بنے گی نا. تو بس یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ سے ہم نے تعلق اپنا مضبوط کر لیا تو پھر ہم کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ پہ پورا یقین ہو جائے گا. پھر یہ کسی چیز سے ہم ڈریں گے نہیں, ہمیں پتہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے
بے شک. نہیں لانے ان کو دے دیجیے. صحیح وہ کہتے نا کہ ایک شعر مجھے پتا نہیں کیا یاد آ رہا کہ منزلیں تمہیں خود آواز دے, یعنی اپنے آپ کو اتنا اوپر اٹھا لو, اتنا یقین کرو کہ تم منزل کو نہیں بلاؤ, منزل تمہیں بلائے. جی آپ بڑے خواب دیکھ کے سو جائیں. جو خواب دیکھتے ہیں ان کی تو نیندیں اڑ جاتی ہیں, ہے نا. جی آپ جی کچھ کہنا چاہیں.
جی میں نے دو چیزیں پڑھی کہ آنے والی زندگی کا سامنا یا تو آپ خدشات کے ساتھ کر سکتے ہیں, کنفیوژن کے ساتھ اور ناکامیوں کے ساتھ, یا پھر آپ اس زندگی کو کامیابی کے ساتھ اور بھرپور طریقے کے ساتھ جو ہے وہ گزار سکتے ہیں. تو میں نے اپنے لیے یہی لیا ہے کہ میں جو ہے اپنی زندگی کو انشاءاللہ کامیابی کے ساتھ اور ان کنفیوژن سے نکل کے, منفی حالات سے نکل کے بھرپور طریقے کے ساتھ جینا ہے, تاکہ میں اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط کر کے اس کام کو صحیح طریقے سے کر سکوں.
کچھ کر کے جائیں نا, دنیا سے جانا تو ہے نا, آج ہو گئے تو اب کچھ کر کے جائیں گے نا. تو جزاک اللہ خیر آپ لوگوں کی. اب گروپنگ کا وقت ہے, ہماری ایک آن لائن ساتھی ہیں وہ شیئر کرنا چاہتی ہیں. میں مائک چھوڑتی ہوں, آپ پلیز مائک لیجیے. میرا حال آپ ہوں میرا ہے, جو بھی ہیں آپ مائک لیجیے, ہم آپ کی بات سنتے ہیں. جی
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ. جی میں آپ کی بس چھوٹی سی بات یہ رکھنا چاہتی تھی کہ جب میں نے اپنا کورس اسٹارٹ کرنا تھا 2013 میں تصویر کا کورس, تو اللہ تعالیٰ نے وہ اپرچونیٹی دی تھی, تو میرے سامنے اتنی ساری چیزیں تھیں, جیسے کہ پڑھائی چل رہی تھی اور میں سیکنڈ ایئر میں تھی, اور ایسا تھا کہ ایک اندر سے ہوتا ہے نا خوف شیطان ڈالتا ہے کہ پھر بعد میں کیسے ہوں گا, لیکن آپ یقین نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ کی ایسی رحمت ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ نے بس ہدایت دی اور میں نے جوائن کر لیا, اور آپ سوچ نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی مدد کی, اتنی مدد کی کہ اللہ تعالیٰ مبارکہ سے بچائے, کہ سبحان اللہ آپ دیکھیں کہ میرا سارا کورس بھی کمپلیٹ ہو گیا ماشاء اللہ, اور جو قرآن تھا وہ تو اللہ تعالیٰ نے دے دیا, ساتھ میں جو دوسری چیزیں چل رہی تھیں دنیا کی تو الحمد للہ وہ بھی اسموتھلی چلتی رہی. تو اب میرا دل یہی چاہتا ہے کہ میں ہر کسی کو چیخ چیخ کے پکار پکار کر کہوں کہ کسی کے پاس بھی کوئی بھی عذر ہے, ایکسکیوز ہے جو وہ سمجھتا ہے کہ وہ اس کو روکنے والا ہے قرآن سے, تو اس کو پلیز سائڈ میں رکھ دیں اور بس اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک اسٹیپ لے لیں. آپ دیکھیں ایک اسٹیپ لینے کی ضرورت ہوتی ہے تڑپنے کی اور توکل کرنے کی, اس کے بعد آپ دیکھنا کہ اللہ تعالیٰ اتنی آسانی کرتے ہیں کہ آپ کو حیران ہو جاتا ہے کہ یا اللہ یہ کیسے پازیبل ہوا. اور میں اگر آپ سوچتی ہوں کہ 2013 تھا نا, 2013 مجھے دیکھیں آپ 50 میں آنے والا ہے, لیکن اگر کوئی نہ کوئی ایک عذر کو لے کر میں قرآن کو نہ سیکھتی تو آج تو یہ دنیا میں زندگی کے لیے سب طاقت اللہ تعالیٰ نے دینے تھے, لیکن سوچے کہ وہ قرآن کے ساتھ تعلق نہ ہوتا, اس سے محرومی ہوتی اور کتنی بڑی ایک مسنگ پارٹ ہوتی نا زندگی کی. اور مجھے یہ بات بھی بہت اچھی لگتی ہے کہ عذر تو گزر جاتا ہے, لیکن اگر اس عذر کی وجہ سے ہم قرآن سے محروم ہو گئے تو پھر وہ بہت بڑا ایک باعث ریگریٹ اور حسرت ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بس اپرچونیٹیز کو اویل کرنے کا چانس دے. استاد جی کی وہ بات بھی بہت زبردست ہے کہ تقوا کا ایک اہم یہ بھی ہے کہ ہمیں اپرچونیٹیز نظر آئیں پھر ہم اس کو ہم اویل کرنے بھی جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے کہ ہم اس کو زندگی کا گھر میں استعمال کر سکیں, اور کوئی بھی عذر کسی کے پاس ہو تو اس کو پلیز ضرور اپنا ایک سائڈ پہ رکھ دیں اور بس اللہ کے ہم اسٹارٹ کر دیں اپنا جرنی. آپ دیکھنا کہ اللہ تعالیٰ ایسی مدد کریں گے کہ ہمارے لیے تو پازیبل ہی نہیں ہے اس طرح امیجن بھی کرنا. سبحان اللہ. جزاک اللہ خیر کثیر استاد جی. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب دیکھیے آن لائن پہ انڈیا سے یہ تھی نا, تو ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو فاصلے کتنے مٹ جاتے ہیں نا. جب بات ایک ہی ہوتی ہے تو پھر سوچیں بھی ایک ہی جیسی ہوتی ہیں. تو جزاک اللہ خیر. آپ لوگ پیچھے آ جائیے اپنے گروپس میں, پیچھے کی لائٹس آپ لوگ کھول لیں اور پلیز گو ہیڈ. ایک ایک منٹ قیمتی ہے. گروپنگ کے لیے اٹھنے کی اسپیڈ سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ کو وقت کا کتنا پتہ ہے.
آپ لوگ تیزی سے موو کریں.